आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास टेंथ के साइंस का फिफ्थ चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी, खाली स्पेसेस छोड़ दी थी, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स जो होंगे उनकी खोज की जाएगी। नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो एलिमेंट्स खोजे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज किस दूसरे एलिमेंट की जैसे सिमिलर होंगी। जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि एक एलिमेंट जिसको खोजा जाएगा उसका नाम होगा, उन्होंने अपनी तरफ से रखा था, एका बोरोन, क्योंकि उस एलिमेंट जो खोजे जाने वाला एलिमेंट था उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज थी वो बोरोन के जैसे होने वाली थी, तो इसीलिए उन्होंने नाम रखा था एका बोरोन। और वहां पर उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी और बहुत बाद में कुछ समय बाद उसकी जब खोज हुई तो पता चला कि वहां पर सच में एक एलिमेंट है और उसका नाम रखा गया स्कैंडियम। तो स्कैंडियम जो था उसकी प्रिडिक्शन, स्कैंडियम के होने की प्रिडिक्शन बहुत पहले ही मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में कर दी थी और उन्होंने ये भी बता दिया था कि स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बोरोन की जैसी होंगी और उसका नाम उन्होंने अपने टाइम पर रखा था एका बोरोन। इसी तरीके से उन्होंने और भी ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे और प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ पर भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। साथ में मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल तो बनाया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन कहीं कहीं पर यह देखा गया कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस ट्रेंड को ना फॉलो करते हुए उन एलिमेंट्स को आगे रखा जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम था, जबकि उन्होंने ज्यादा वाले एटॉमिक मास को आगे रखना चाहिए था, लेकिन ना रखते हुए भी उन्होंने कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को आगे रखा। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में आए। साथ में क्योंकि मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट्स थे उनकी ग्रुपिंग इस आधार पे की थी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की है, सिमिलर है तो वो एक ग्रुप में आएंगे, तो इसीलिए नोबल गैसेस जो थी उनके लिए भी जगह थी, अगर उनको रखना था तो उनके लिए एक नया ग्रुप बनाया जा सकता था, क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं उनकी आपस में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो इसीलिए उनको बीच में कहीं पर डालने की जरूरत नहीं थी, उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा जा सकता था। तो ये कुछ खास बातें थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की। साथ में लिमिटेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की खास बातें होने के साथ में कुछ उनमें कमियां भी थी, जैसे कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दी थी। हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी दिखाता है जो अल्कली मेटल्स की जैसी होती है। हमने बात की हुई है कि ग्रुप वन के जो ए ग्रुप होता है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है आप लोग उसको देखो, पेज नंबर 83 पर जो टेबल 5.4 है उसमें जो ग्रुप वन है उसका ए ग्रुप जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें से सारे के सारे अल्कली मेटल्स है हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है वो ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो अल्कली मेटल्स की जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन की जैसी होती है। हमने बात किया हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली जो फैमिली है ये हेलोजन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हेलोजन की जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो ना हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से मिलती है ना ही वो हेलोजन से मिलती है। तो दिक्कत ये आई थी कि कहाँ रखा जाए, आखिर हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा जाए, हेलोजन के साथ रखा जाए या अल्कली मेटल्स के साथ में रखा जाए। तो ये दिक्कत वो सॉल्व नहीं कर पाए थे और उन्होंने उसको हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के ग्रुप में रख दिया था। दूसरी परेशानी ये थी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दो आइसोटोप्स या दो से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास वाले फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे अगर क्लोरीन का एग्जांपल ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो तो 17 होता है लेकिन उसके दो आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि एक क्लोरीन एलिमेंट तो ऐसा मिलता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है और एक और एलिमेंट मिलता है क्लोरीन का ही जिसका एटॉमिक मास 37 होता है। और अगर हम मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इन दोनों आइसोटोप्स को तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए उनके पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, लेकिन इससे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एक ही एलिमेंट को आप उसके दो आइसोटोप यानी कि दो फॉर्म होने की वजह से अलग अलग जगह पर रख रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत थी कि आइसोटोप्स की कैसे अरेंजमेंट की जाए पीरियोडिक टेबल में। एक और दिक्कत ये थी कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं मेंडलीव्स का, तो हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक मासेस हैं उसमें बहुत बड़ा बड़ा गैप दिखता है। जैसे हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 है, उसके बाद जब लिथियम आता है तो उसका एटॉमिक मास होता है 6, तो इसमें बहुत बड़ा गैप आता है बीच में। तो हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसा है कि इस गैप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स खोजने हैं, क्या ऐसी इंडिकेशन हमें मिल रही है। तो इन सब चीजों की वजह से कुछ कुछ गड़बड़ भी थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो मेंडलीव्स ने सबसे अच्छी कोशिश की थी एक पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने में। तो इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चंस करेंगे जो पेज नंबर 85 पर है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं और आपको बताना है कि इनके जो फॉर्मूला होंगे ऑक्साइड के वो क्या होंगे, और आप लोग मदद ले सकते हैं मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहला एलिमेंट है पोटेशियम। आपको बताना है कि पोटेशियम का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, और आप लोग मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की मदद ले सकते हैं। पेज नंबर 83 पर आप लोग अगर देखेंगे तो पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 के ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें आप लोगों को जो ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है R2O। जनरल फॉर्मूला R2O है, यानी कि अगर हम R की जगह पोटेशियम का डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा K2O। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, K2O। अगला एलिमेंट है कार्बन। तो आप ऐसे ही कार्बन के ऑक्साइड को भी चेक करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर से पेज नंबर 83 के टेबल पर देखेंगे तो आप लोगों को कार्बन दिखेगा। कार्बन जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप 4 का एलिमेंट है, और वो भी ग्रुप 4 में भी ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप 4 में जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया RO2। आर की जगह कार्बन को डालेंगे तो आपको मिलेगा CO2, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है वो ग्रुप 3 के ए ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है R2O3। आर की जगह आप एल्युमिनियम को डालेंगे आपको मिलेगा Al2O3। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3। नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकन। तो सिलिकन जो है वो अगेन 4th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप ए का, ग्रुप 4 के अंदर भी ग्रुप ए का एलिमेंट है, और इसका जनरल फॉर्मूला ऑक्साइड का क्या है, RO2। तो सिलिकन का जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा SiO2, सिलिकन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला एलिमेंट है बेरियम। तो जो बेरियम है वो ग्रुप 2 के 1 मतलब कि ए ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 के ए ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 में ए ग्रुप को देखेंगे तो आप लोगों को लास्ट एलिमेंट दिखेगा, जिसका एटॉमिक मास है 137.34 और इसका एटॉमिक सिंबल है कैपिटल बी स्मॉल ए, इसे बेरियम कहते हैं। बेरियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा RO। तो R की जगह आप लोग BA को डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम ऑक्साइड, BAO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, एनी टू, दो, कोई भी दो आपको बताने। इसमें आपसे पूछा है कि गैलियम के अलावा दो और एलिमेंट्स बताओ जिसकी जगह पर मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी थी और बाद में जाकर के उस एलिमेंट की डिस्कवरी की गई। तो आप लोगों को बताए गए हैं 3 स्पेसेस, तो आपको बताए गए हैं, एक एका एल्युमिनियम बताया गया है, एक एका बोरोन बताया गया है, और एक और आप लोगों को एका सिलिकन बताया गया है। तो और इनके असली नाम क्या क्या है, एका बोरोन का नाम है स्कैंडियम, और एका एल्युमिनियम का नाम है गैलियम, और एका सिलिकन का नाम है जर्मेनियम। ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में जाकर डिस्कवर हुए थे, तो इनका बाद में जो नाम रखा गया था वो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम था। मेंडलीव्स ने अपने टाइम पर एक तो खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे, और उन्होंने नाम इस आधार पर रखा था कि उस एलिमेंट की जो डिस्कवर होने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी। तो जो स्कैंडियम खोजा जाने वाला था तो स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके जैसी सिमिलर होने वाली थी, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स बोरोन के जैसी होने वाली थी। सिमिलरली गैलियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के जैसी होने वाली थी, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज सिलिकन के जैसी होने वाली थी। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दो ऐसे एलिमेंट्स बताओ गैलियम के अलावा जिसकी जगह पर मेंडलीव्स ने खाली जगह छोड़ी थी और उसकी डिस्कवरी लेटर ऑन की गई। तो गैलियम के अलावा आप लोग लिख सकते हैं स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, जिनका जो नाम मेंडलीव्स ने अपने टाइम पर दिया था वो क्या था, स्कैंडियम का तो नाम था एका बोरोन, और जो जर्मेनियम था उसका नाम था एका सिलिकन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव्स इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने क्या क्राइटेरिया यूज किया, उन्होंने क्या बेसिस रखा था अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे। तो मेंडलीव्स ने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली एक कोरिलेशन ढूंढा था, वो एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे बिटवीन एटॉमिक मास एंड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि मेंडलीव्स एलिमेंट के एटॉमिक मास के बीच में और उस एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध ढूंढना चाहते थे और उसी के आधार पर इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे जज की एलिमेंट्स की, केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने ऐसे जज की कि वो देख रहे थे कि वो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा केमिकल फॉर्मूला वाला कंपाउंड बनाता है, यानी कि उस एलिमेंट के ऑक्साइड का और हाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है, ये इन्होंने केमिकल बेसिस रखा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो आधार इन्होंने रखा वो यही रखा कि वो जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, वो ऑक्साइड किस फॉर्मूले का बनाता है और हाइड्राइड किस फॉर्मूले का बनाता है। और इसमें पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे जो उनका क्राइटेरिया था वो यही था कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास है उसके साथ कैसा उसका रिलेशन है, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उस एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन किस तरीके का है विद इट्स एटॉमिक मास। और हम जब मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मेंडलीव्स ने बेसिकली दो क्राइटेरिया यूज की थी, और वो ये थी कि एक तो उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था, और दूसरा उन्होंने सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था। तो उन्होंने ग्रुपिंग किस हिसाब से की थी, इस हिसाब से कि जो एलिमेंट्स है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा था, नहीं मिलती तो दूसरे ग्रुप में रखा था। साथ में उन्होंने जब अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो आप लोग यहाँ पर क्राइटेरिया में ये लिख सकते हैं कि इन्होंने दो क्राइटेरिया यूज किए थे, एक तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और दूसरा इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो इस आधार पर बनाए थे कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन एलिमेंट्स की, एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो सिमिलर होनी चाहिए आपस में। और जब अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया था तो उनको जो पीरियोडिक टेबल मिला था उसमें उन्होंने देखा था कि एलिमेंट्स की एटॉमिक मास जो है वो काफी हद तक प्रभावित करती है उस एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। यहाँ पर पूछा है कि नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में क्यों रखा जाता है। तो ऐसा इसलिए रखा जाता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट ज्यादा नहीं करती हैं, कंपाउंड्स उनके बहुत कम मिलते हैं, वो बहुत अनरिएक्टिव होती हैं, और साथ में इन नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज बाकी किसी एलिमेंट से नहीं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी और एलिमेंट के ग्रुप में नोबल गैसेस को नहीं डाल सकते, उनकी प्रॉपर्टी सभी नोबल गैसेस की आपस में तो सेम होती है, लेकिन दूसरे किसी एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं, ये अनरिएक्टिव होती है, बहुत स्टेबल होती है, कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत कम करती हैं। तो इसीलिए नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, क्योंकि मेंडलीव्स ने जब ग्रुपिंग की थी तो यही देख करके की थी कि एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम होनी चाहिए और बाकी दूसरे एलिमेंट से अलग होनी चाहिए, यानी कि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक और पीरियोडिक टेबल बनाया गया, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हेनरी मूसले, और इन्होंने 1913 में ये पीरियोडिक टेबल बना करके दी थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, इसका जो कॉन्सेप्ट था बनाने का, ये बाकी सारे पीरियोडिक टेबल से बहुत अलग था। अभी तक आप लोगों ने जितने भी पीरियोडिक टेबल्स, जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसमें सभी साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेंडलीव्स ने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में ही इंक्रीज किया था, अरेंज किया था। लेकिन हेनरी मूसले ने कहा कि एटॉमिक मास के बजाय अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें ज्यादा सही और एक्यूरेट एक टेबल मिलेगा। और इसीलिए ये कहते थे कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास से ज्यादा किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अलग अलग सभी के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का जो जनरल सिंबल है वो जेड है, कैपिटल जेड जो सिंबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट जनरली एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर हेनरी साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उन्होंने एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर यूज किया अरेंजमेंट करने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसको भी चेंज कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी। जैसे कि उन्होंने जो लास्ट में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ कहा वो कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो कुछ टाइम के बाद हमें ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मेंडलीव्स ने कहा था कि एटॉमिक मास जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का, लेकिन जो हेनरी मोजले थे उन्होंने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर होता है पीरियोडिक फंक्शन किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का हमें पता चल जाए तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं उसके बराबर होता है। बहुत एक्यूरेटली बोलें तो एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअली ये बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो हमें किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। और मैंने आपको बताया हुआ कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, और प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, तो इसीलिए हम लोगों को एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता देता है। अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम जो होता है उसके बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो होता है, बिल्कुल अंदर भीतर सबसे सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन्स का काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ करके ये रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, हमेशा ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। और एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उनका फंक्शन, उनका काम जो होता है वो यही होता है कि वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको होल्ड करके रखते हैं, अट्रैक्शन के द्वारा, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा वो उनको होल्ड करके रखते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट की गई है एलिमेंट्स की तो वो कैसे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और इसमें क्या होता है कि जब हम एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट की ओर जाते हैं तो अगले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो पिछले वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर प्लस वन होता है, यानी कि एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 25 था तो अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 25 + 1 = 26 हो जाएगा। तो जैसे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं तो +1 + 1 करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट, उसके अगला एलिमेंट इस तरीके से मिलता जाएगा। एटॉमिक नंबर एक से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन्स की संख्या एक एक करके बढ़ती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोटॉन्स की नंबर भी बढ़ती जाएगी, तो अगर प्रोटॉन बढ़ गया है इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया है। तो आपको ये कहने का मतलब कि अगर किसी एटॉमिक नंबर में प्लस वन हो तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, इसका मीनिंग ये है कि पिछले वाले एलिमेंट में एक प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो अगला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। और जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो वहां पर जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए लोग और उसका रिलेशन ढूंढ पाए विद देयर एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी 5.3 करनी है, पेज नंबर 85 पर है। इसमें आप लोगों से बोला है कि आप लोग अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो आप बताइए कि पोजीशंस जो हैं कोबाल्ट और निकल की वो कैसे रिजॉल्व की गई। तो आप लोगों को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो बेस्ड ही है एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, लेकिन मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बनाया गया था। और वहां पर ये गड़बड़ हो रही थी कि कोबाल्ट जो था उसका एटॉमिक मास ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसको निकल के पीछे रखा गया, और निकल जो था उसका एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम था, लेकिन फिर भी उसको कोबाल्ट के आगे निकल को रखा गया। तो ये जो गड़बड़ थी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल सॉल्व हो गई, क्योंकि मेंडलीव्स की तरह जो मोजले थे, हेनरी मोजले, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जिसकी वजह से हमें पता है कि निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, विच इज हायर देन दैट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो इसीलिए निकल जो आएगा हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी प्लेसमेंट जो होगी वो कोबाल्ट के आगे होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक्टिविटी 5.3 में, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका भी सेम यही आंसर है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास पर ना बेस्ड होकर के एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और आइसोटोप्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है तो आप उसको एक ही एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एटॉमिक मास पर बेस्ड होता तो हमें प्रॉब्लम आ जाती कि क्या हम दो प्लेसेस दें आइसोटोप्स को या फिर एक ही जगह पर उसे रखें। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया एक्टिविटी 5.3 में ही, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या आपको एक ऐसा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो जैसा कि आप लोगों ने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में देखा था वहां पर क्या होता था, वहां पर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया गया था, जिसकी वजह से एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल्स में भी आ जाता है, समथिंग पॉइंट कुछ ऐसे करके आ जाएगा, 6.9 करके आप लोगों के लिथियम का एटॉमिक मास है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा होल नंबर में होते हैं, यानी कि वो मल्टीपल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होते हैं, 1.5, 0.2 इस तरीके से प्रोटॉन्स नहीं होते। डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में आप प्रोटॉन्स को नहीं लिख सकते क्योंकि वो होते नहीं है, हमेशा प्रोटॉन्स जो होंगे वो होल नंबर के मल्टीपल ही होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्टिविटी में पूछा गया एक्टिविटी 5.3 में, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें हाइड्रोजन की प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए। आप लोग पेज नंबर 86 पर जो आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है अगर आप उसे देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट की गई है वो ग्रुप 1 के साथ की गई है, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ में की गई है। लेकिन अभी भी बहुत डिस्प्यूट होता है हाइड्रोजन की प्लेसमेंट्स को लेकर के। हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की जैसी भी होती है कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हैलोजन्स की जैसी होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो ना अल्कली की जैसी होती है ना हैलोजन्स की जैसी होती है। तो अल्कली के साथ रखा जाए, हेलोजेंस के साथ रखा जाए या अलग रखा जाए, इसके पीछे बहुत डिस्प्यूट होता है साइंटिस्ट के बीच में कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। तो इसका अभी भी डिसीजन नहीं हो पाता, कुछ ऑथर्स इसको एलिमेंट्स, कुछ ऑथर्स क्या करते हैं हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट होती है अल्कली मेटल्स के साथ में कर देते हैं, और कुछ ऑथर्स इसको बिल्कुल सेंटर में, ना किसी अल्कली के साथ ना किसी हेलोजन के साथ, बिल्कुल सेंटर में टॉप में ऊपर पीरियोडिक टेबल में लगा देते हैं सबसे अलग करके। तो आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती है, कभी कभी आपको पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ में उनके ऊपर टॉप पर दिखेगा, कभी कभी आप लोगों को हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल मिड में सेंटर में बिल्कुल अलग से आप लोगों को दिखेगा पीरियोडिक टेबल में, किसी के साथ अटैच होकर के नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसे एनामोलस कहा जाता है, ना डिफाइन कर पाने योग्य ऐसी पोजीशन जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते, हम क्लियरली नहीं बता सकते कि हमने उसे कहाँ रखा है, और उसके पीछे जो सारे के सारे रीजंस है उसको हम नहीं लगा सकते क्योंकि रीजंस जो है वो फिट बैठेंगे नहीं। इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर एनामलस कहा जाता है, यानी कि डिफाइन नहीं किया सकता, इसे क्लियरली नहीं बताया जा सकता कि कहाँ इसे रखना चाहिए। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की ओर 18 कॉलम्स है, हाइड्रोजन, उसके बाद बेरिलियम का ग्रुप है, उसके बाद स्कैंडियम का ग्रुप है, इस तरीके से पूरे टोटल 18 है। और 18वां ग्रुप जो है वो किसका है, 18वां वो ग्रुप है नोबल गैसेस का। तो नोबल गैसेस को यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट मिल गई है और उनको एक ग्रुप में रखा गया है और वो 18th ग्रुप है। और इन वर्टिकल कॉलम्स को, जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली आप अगर देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो आपको 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स दिखेंगे। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 7 हैं, इनका नंबर 7 है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट रो में रखे गए हैं, उसके बाद लिथियम सेकेंड रो में, इस तरीके से 7 रोज बनाई गई हैं। और इन 7 रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि इसमें वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं। अब हम ये समझना चाहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की प्लेसमेंट किस तरीके से की जाती है, किस आधार पर की जाती है। और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, एक्टिविटी 5.4 पेज नंबर 87 पर है। इसमें आपको कहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखो और उनके नाम आप बताओ। तो सबसे पहला ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, जो यहाँ पर आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है पेज नंबर 86 में। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट है लिथियम, फिर उसके थर्ड एलिमेंट जो है वो कौन है, वो है सोडियम, फोर्थ एलिमेंट है पोटेशियम, फिफ्थ एलिमेंट है रूबीडियम, रूबीडियम का सिंबल है RB, कैपिटल R स्मॉल B, इसका एटॉमिक नंबर है 37। उसके बाद जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55, फ्रांसियम का सिंबल है कैपिटल F स्मॉल R, इसका एटॉमिक नंबर है 87। ये सेवन्थ एलिमेंट है अल्कली मेटल्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का। अब आप लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देख चुके, अब आप क्या करिए कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर चेक करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और ज्यादा एलिमेंट्स का नहीं लिख करके देखिए, आप सिर्फ 3 शुरू के 3 के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इन्हीं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्योंकि आपको इनके एटॉमिक नंबर तो पता है, आप लोगों को पेज नंबर 86 में दिया गया है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के ऊपर जो 1 लिखा है वो बता रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम के ऊपर 3 लिखा है वो ये बता रहा है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरीके से हर एक ब्लॉक के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर जो है कैपिटल बोल्ड लेटर्स में जो नंबर लिखा है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता रहा है। तो इसी तरीके से सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो है 11। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो आप उसको के शेल में डाल दोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या है, वो के शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को ले लो, लिथियम को, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, तो आप कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे आप एल शेल में डाल देंगे। तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल है एल शेल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हो कि लिथियम का भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखेंगे कि सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो कहाँ आएगा, वो एम शेल में आएगा। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम शेल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के बीच में, तीनों के तीनों एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होता है, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल उस शेल को कहते हैं जो सबसे बाहर वाला शेल हो। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम तीनों के एलिमेंट्स जो हैं, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कितने हैं? वो 1 है। सिमिलरली आप बाकी के एलिमेंट्स पर भी यही सेम रूल अप्लाई करके देखेंगे, शुरुआत के 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि 18 वर्टिकल जो रोज हैं, उस हर एक रो यानी कि हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी संख्या बिल्कुल सेम है। जैसे कि ग्रुप 1 की अगर बात की जाए तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका अलग होगा इलेक्ट्रॉन का नंबर वैलेंस शेल में, लेकिन आपस में सेम होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के वैलेंस नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ग्रुप 1 जो होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग होंगे, ग्रुप 2 के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में अलग होंगे। ग्रुप 1 और 2 के तो आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रुप 1 के अपने खुद के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के मिलते जुलते होंगे। यानी कि अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे। और अगर आप ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन से अलग होंगे, लेकिन आपस में जो उस ग्रुप 2 के आपस के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके खुद के एक दूसरे के बीच में सेम होंगे। मतलब यह है कि बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम का, बेरियम का, इनका आपस में सेम होगा लेकिन ग्रुप 1 और 2 के बीच में डिफरेंस होगा। आप करके भी देख लो, अप्लाई करके देख लो। बेरिलियम जो है इसका आप लोगों को एटॉमिक नंबर बताया गया 4 है, तो आप बेरिलियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में आ जाएंगे और 2 एल शेल में आ जाएंगे। तो इस बार आप देख रहे हो कि बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं, लेकिन लिथियम के 1 थे, तो इन 2 ग्रुप्स में डिफरेंस होगा। लेकिन बेरिलियम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलती है, सेम है, और यही बात हर एक ग्रुप पर अप्लाई होती है। जैसे अगर आप हेलोजन फैमिली जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली जो फैमिली है, ग्रुप 17, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के आपस में सेम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक ग्रुप जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्रुप 17 में फ्लोरीन का जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि आज का जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेंगे, साथ में जो ये एक्टिविटी 5.4 है इसमें जो मैंने आप लोगों को बात बोली है इसे हर एक एलिमेंट के साथ अप्लाई करके देखिएगा। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, उनके साथ अप्लाई करके देखिएगा। आप लोगों को जो मैं बात बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक ग्रुप जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस एलिमेंट्स के सारे सेम होते हैं, लेकिन 2 ग्रुप्स में डिफरेंस होता है। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिफरेंस होगा, ग्रुप 2 ग्रुप 3 में डिफरेंस होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल का है वो सेम होता है। तो ये चीज़ आप लोग अप्लाई करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।